नमस्कार, 27 जनवरी के दिन भर के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 80 के पार, भारत में भी चिंता। नागरिकता संशोधन कानून पर यूरोपीय संसद में चर्चा का प्रस्ताव, भारत ने कहा ये उसका आंतरिक मामला। दिल्ली चुनाव में गर्मा रहा है शाहीन बाग का मामला, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साधा प्रदर्शनकारियों पर निशाना।
शाहीन बाग एक विचार है जहां भारत के झंडे और भारत के संविधान का कवर है और भारत के तोड़ने वालों को मंच दिया जाता है।
एक मुलाकात चिपको आंदोलन पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर शेखर पाठक से।
चिपको की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि चिपको में कभी भी चिपकने का मौका नहीं मिला। चिपकने की नौबत आ गई तो वो आपके पराजय की शुरुआत है।
चर्चा और विषयों की भी, मगर पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। चीन में कोरोना वायरस की चपेट में आए अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस से संक्रमित लगभग 3,000 लोगों के बीमार होने की पुष्टि भी हुई है। वायरस संक्रमण पर लगाम लगाने के मद्देनजर चीनी नववर्ष की छुट्टियां 3 दिन बढ़ा दी गई हैं। सोमवार को चीनी प्रधानमंत्री ली के चियांग ने संक्रमण के केंद्र वुहान शहर का दौरा किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी चिंता जताते हुए कहा है कि ये जानलेवा वायरस तेजी से फैल रहा है। भारत के राजस्थान राज्य में भी एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। भारत सरकार ने असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो उग्रवादियों के प्रतिनिधियों ने असम समझौता 2020 पर हस्ताक्षर किए। उम्मीद जताई जा रही है कि समझौते के बाद असम में पिछले 50 वर्षों से व्याप्त बोडोलैंड विवाद थम जाएगा। पिछले 27 वर्षों में यह तीसरा असम समझौता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि यह समझौता क्षेत्र की अखंडता बरकरार रखेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि इस समझौते के तहत NDFB के 1550 कैडर अपने हथियार और हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर देंगे। तालिबान के दबदबे वाले दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह एक यात्री विमान था जो आग लगने की वजह से हादसे का शिकार हुआ। हादसा गजनी जिले के डेहयाक इलाके में हुआ है। दुर्घटना की वजह का अब तक पता नहीं चला है और न ही घायलों या मृतकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी मिली है। लिबनान में प्रदर्शनकारियों ने बजट से संबंधित एक महत्वपूर्ण चर्चा से पहले संसद के बाहर सुरक्षा बलों पर पत्थरों से हमला किया है। लिबनान में गहराते आर्थिक संकट के बीच पिछले 100 दिनों से ज्यादा वक्त से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। लिबनान दुनिया के उन देशों में से है जिन पर सबसे ज्यादा कर्ज है। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक शख्स नूर अल दीन को सुनिए।
हमें सड़क पर उतरे 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि ये सरकार अपने पुराने ढर्रे पर वापस लौट रही है। इसने लोगों की मांगों का कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है कि इस सरकार के जाने और नए संसदीय चुनाव कराने का वक्त है। ऐसा होगा तभी लोग अपनी बातें रख पाएंगे। ये थे लेबनान के एक प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जाने माने खिलाड़ी, फिल्मी सितारे और नेता अमरीकी बास्केटबॉलर कोबे ब्रायंट को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की लॉस एंजलिस में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। 41 वर्षीय ब्रायंट अपने निजी विमान में 13 साल की बेटी गियाना के साथ सफर कर रहे थे। हादसे में उनके अलावा उनकी बेटी और 9 अन्य लोगों की मौत भी हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोबे को बास्केटबॉल कोर्ट पर एक लीजेंड बताया है। अमेरिका में होने वाले मैच से पहले लोगों ने उनके सम्मान में कुछ मिनट का मौन रखा। वहीं लॉस एंजलिस के स्टेपल सेंटर में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। अमेरिका के जाने माने स्केटबोर्डर मार्क गुंजलिस ने इन शब्दों के साथ कोबे को श्रद्धांजलि दी।
He's ours, and you know, he brought the city together. I mean, look, tonight, everyone's dancing and singing, drinking and smoking in his honor.
वो हमारे हैं। आप देख सकते हैं कि आज सब लोग उनके सम्मान में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उन्होंने इस शहर को बनाया। BBC समाचार।
दिन भर के इस अंक में आपके साथ हूं मैं मुकेश शर्मा। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर भी लाइव सुन सकते हैं। शहर लॉकडाउन में है, यानी बंद है, जबकि कई अन्य शहरों ने यात्रा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दूसरे शहर में बिजनेस 10 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। नए साल की छुट्टियां रविवार तक बढ़ा दी गई हैं। आप समझ ही गए होंगे कि बात चीन में फैले कोरोना वायरस की हो रही है। इसके चलते वहां मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है, जबकि इससे बीमार लोगों की संख्या 3000 बताई जा रही है। इधर भारत में भी इस वायरस को लेकर चिंता देखी जा रही है। बीबीसी के विभिन्न संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
चीन में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही चीन इस पर नियंत्रण करने की सभी कोशिशें कर रहा है। चीन के खूबे प्रांत में 5,00,000 स्वास्थ्य कर्मी इस वायरस से लड़ने में लगे हुए हैं। कई प्रांतों में व्यवसाय पर फर्क पड़ा है। रेस्टोरेंट और दुकानें बंद हैं या स्टाफ को घर से काम करने के लिए कहा जा रहा है। इस वायरस से होने वाले बुखार और सांस संबंधी बीमारी के कारण 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता सांग सुली ने कहा, 27 जनवरी की रात 12 बजे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग को 30 प्रांतों से रिपोर्ट मिली, जिसमें 2,744 लोग संक्रमित पाए गए। इनमें से 461 लोग गंभीर रूप से बीमार थे और मरने वालों का आंकड़ा 80 हो गया है। कई लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है और 51 लोगों को बचा लिया गया है। इसके अलावा 5,704 संदिग्ध मामले हैं और 32,799 लोग संक्रमित लोगों के संपर्क में थे। ये थे चीन के स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता सांग सुली के शब्द। चीन के वुहान शहर में इस वायरस के बारे में पता चला था, जो अब पूरी तरह बंद है और कई अन्य शहरों में यात्रा पर प्रतिबंध जारी है। चीनी प्रधानमंत्री ली केंगियांग ने वुहान का दौरा किया है। शंघाई में सरकार ने लोगों को 10 फरवरी तक काम पर जाने से रोक दिया है। चीनी सरकार ने कहा है कि वो वायरस पर नियंत्रण रखने के लिए चीनी नए साल की छुट्टियों को बढ़ा रहा है। पहले छुट्टियां 30 जनवरी को पूरी होनी थी, लेकिन अब इसे 2 फरवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये बीमारी तेजी से फैल रही है। ये वायरस उन लोगों से भी फैल रहा है जिनमें इसके लक्षण नहीं होते। कोलंबिया विश्वविद्यालय में संक्रमण और प्रतिरक्षा केंद्र के इयान लिपकिन कहते हैं कि ये बहुत चिंता की बात है। अगर ये सच है तो ये पूरी तस्वीर बदल देगा, क्योंकि सार्स या मर्स जैसे संक्रमण उन्हीं लोगों से फैलते हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखने शुरू हो चुके होते हैं, और ऐसे ही हम लोगों की पहचान करते हैं और इसी से हम तय करते हैं कि किसे पहले इलाज देने की जरूरत है। ये थे कोलंबिया विश्वविद्यालय में संक्रमण और प्रतिरक्षा केंद्र के इयान लिपकिन के शब्द। ये वायरस सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। थाईलैंड, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ देशों में कोरोना वायरस के कम से कम 44 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद चीन से भारत लौटे 11 लोगों को निगरानी में रखा गया है। इन 11 में से 7 लोग केरल, 2 मुंबई और 1-1 बेंगलुरु और हैदराबाद से हैं। केरल सरकार ने कहा है कि उसके राज्य के 7 लोगों में इसके मामूली लक्षण दिखाई दिए हैं। चीन और हांगकांग से 20,000 यात्री भारत लौट रहे हैं, जिनकी एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। केरल में 80 लोगों को निगरानी में रखा गया था, जिनमें से 73 में कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा दिल्ली के एम्स अस्पताल में एक निगरानी वार्ड बनाया गया है, जिसमें इससे जुड़े संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए बेड तैयार किए गए हैं।
चीन में कोरोना वायरस से मारे जाने वालों की संख्या 80 से ऊपर हुई। उधर यूरोपीय संसद में विभिन्न सांसदों के समूहों ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून और जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया है। इन 6 प्रस्तावों पर बहस 29 जनवरी को होगी और अगले दिन मतदान। भारत सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि ये पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। और जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता सलमान रावी।
371 सदस्यों वाली यूरोपीय संसद में जो प्रस्ताव लाए गए हैं, उनमें नागरिकता संशोधन कानून और जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने के अलावा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC भी शामिल है। इसमें यूरोपीय सांसदों का सबसे बड़ा समूह प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स इन द यूरोपियन पार्लियामेंट यानी के SD ग्रुप के अलावा यूरोपियन यूनाइटेड लेफ्ट, नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट यानी GUE NGL शामिल हैं। इन 6 प्रस्तावों पर कुल 626 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संसद में लाए गए इन प्रस्तावों पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नया नागरिकता संशोधन कानून पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस कानून को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार ने भारत की संसद के दोनों सदनों में पारित भी कराया है। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के सांसद पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का शिकार हुए हैं और इससे रंजिशें ही बढ़ेंगी।
ये थोड़ी मिसगाइडेड है और मोटिवेटेड है, प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि फ्रांस या इटली से इमिग्रेंट्स को वो बाहर नहीं निकालते जो नहीं वो चाहते, या इंग्लैंड में उनको डिटेंशन कैंप्स में नहीं रखा जाता। तो इंडिया को जो सिंगल आउट कर रहे हैं ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के बहकावे में आके, इसका महत्व सिर्फ यहाँ तक है कि रंजिश बढ़ेगी और एक अफसोस होगा कि एक पार्लियामेंटेरियंस भी सच और झूठ के पर्दे में वो भूल के रह गए।
इससे पहले मलेशिया ने भारत के नागरिकता कानून को लेकर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार पर असर भी पड़ा, जिससे मलेशिया को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। राजनयिकों का कहना है कि इस तरह के प्रस्तावों का यूरोपीय देशों और भारत के बीच कैसा असर होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसल्स जाना है, उससे पहले इस तरह के प्रस्तावों से राजनयिक संबंधों पर असर पड़ना लाजमी भी है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो भी प्रदर्शन हुए हैं उनमें पिछले कुछ समय से एक जगह जिसका नाम आपने शायद सबसे ज्यादा सुना होगा वो है शाहीन बाग का नाम। शाहीन बाग दक्षिणी दिल्ली का वो इलाका है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को और बढ़ा रहा है। चुनाव प्रचार में विभिन्न दलों के नेता शाहीन बाग का जिक्र कर रहे हैं। आज कैसे नेताओं की बयानबाजी में शाहीन बाग छाया रहा, सुनिए दिलनवाज पाशा की इस रिपोर्ट में, जो शुरू होती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आवाज से।
मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्या हुआ बाबरपुर वालों को ऐसी आवाज आती है? इस शाहीन बाग के जितने समर्थक है वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। तो मित्रों बटन दबाओ, तब इसने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे।
दिल्ली के बाबरपुर में बीजेपी के लिए वोट मांगने गए गृहमंत्री अमित शाह के निशाने पर शाहीन बाग का प्रदर्शन रहा, जहां महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। वहीं देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता करके शाहीन बाग को भारत को तोड़ने वालों का मंच बता दिया।
मित्रों शाहीन बाग अब दिल्ली का एक मोहल्ला नहीं है, शाहीन बाग एक भूगोल का टुकड़ा नहीं है, शाहीन बाग एक विचार है जहां भारत के झंडे और भारत के संविधान का कवर है और भारत के तोड़ने वालों को मंच दिया जाता है, जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग पीछे खड़े रहते हैं, जहां पर मासूम बच्चों की मासूमियत को छलावा देते हुए उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता है।
रविशंकर प्रसाद को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ यूं जवाब दिया।
और आज लिख के ले लो, ये 8 तारीख तक रस्ते नहीं खुलने वाले, 9 को खुल जाएंगे। ये शाहीन बाग के रस्ते भारतीय जनता पार्टी खोलना ही नहीं चाहती। मैं आज आप सब लोगों के जरिए निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी को, पीयूष गोयल जी को, रविशंकर प्रसाद जी को, जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं, सबको जाना चाहिए शाहीन बाग, जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके वो रस्ते खुलवाने चाहिए। कह रहे केजरीवाल से हमको परमिशन चाहिए, आज परमिशन दे दी, बीजेपी वालों चलो करो अभी 1 घंटे में खुलवा दो रास्ता।
आज दिल्ली चुनावों में शाहीन बाग का मुद्दा हावी रहा, तो क्या शाहीन बाग इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि दिल्ली के चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकता है? क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार कहते हैं,
बीजेपी का प्रयास होगा कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट है उसको एक इस तरह का कलर दिया जाए कि ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट है, और इस तरह का अगर वो करने में सफल हुए तो जो ध्रुवीकरण हो सकता है वो शार्पर हो सकता है, ध्रुवीकरण दिल्ली की राजनीति में। अगर ऐसा हो पाया तो इससे बीजेपी को आज जो स्थिति है उससे बेहतर होगी, तो बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं फायदा होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। कुल मिला के मुझे लगता है इलेक्टोरल बेनिफिट्स बीजेपी को बहुत नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका असर या पोलराइज्ड वही लोग होंगे जो ऑलरेडी इनके वोटर हैं। थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन बड़ी संख्या में लोग बीजेपी की तरफ झुक जाएंगे अगर बीजेपी सक्सेसफुल हो गई इस कैंपेन को एक तरह से सफल बनाने में, ऐसा मैं नहीं मानता।
दिल्ली की 70 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोट नतीजे तय कर सकते हैं। शाहीन बाग का मुद्दा उठाकर बीजेपी की नजर बाकी 60 सीटों पर है। शाहीन बाग पर चर्चा से ये भी साफ हो गया है कि दिल्ली चुनावों ने अब सांप्रदायिक रंग ले लिया है। नतीजों पर इसका असर दिखना अभी बाकी है। दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
इस बीच भारत सरकार ने एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है। आज सरकार ने इसका ऐलान करते हुए निविदाओं के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार सरकार को एयर इंडिया का खरीदार मिल पाएगा। सुनिए बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह की यह रिपोर्ट।
एयर इंडिया को बेचने के लिए 2 साल के अंदर केंद्र सरकार दूसरी बार कोशिश कर रही है। इस बार सरकार 100% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार ने सोमवार को इस सिलसिले में निविदाएं मंगवाई, जिसकी आखिरी तारीख 17 मार्च रखी गई है, जिसमें एयर इंडिया के 100% हिस्से को बेचने की बात कही गई है।
The transfer of management control and sale of 100% shares of Air India,
प्रबंधन का नियंत्रण और एयर इंडिया के 100% शेयर बेचे जाएंगे। एयर इंडिया के साथ साथ उसकी उप कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड की 100% और ज्वाइंट वेंचर आईसेट्स में 50% हिस्सेदारी बेची जाएगी। ये थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द।
लेकिन सरकार के इस फैसले का बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया है। उन्होंने 2 ट्वीट कर इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है।
कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग में, जिसका मैं मेंबर हूं और मंत्री अध्यक्ष हैं, सारे एमपी एक को छोड़कर मेरे साथ दी, कहा कि हाँ ये सही बात है, इसको सुधारना चाहिए, परंतु नेशनल प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। बेचने के लिए पहले ऐलान कर दिया। मैं तैयार हूँ कोर्ट के लिए, उसी दिन अगले दिन चले जाऊंगा।
अगले दिन 17 के अगले दिन या 21 के अगले दिन?
अब कोर्ट में कोई होता है ना, वो नुक्स देखते हैं, ये देखते हैं, टाइपिंग में एरर होती है, मैंने तुरंत चले जाऊंगा।
इससे पहले केंद्र सरकार ने साल 2018 में एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन तब बात नहीं बनी। लेकिन इस बार सरकार ने कई शर्तों में बदलाव किए हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें खरीदार मिल जाएगा। एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन कहते हैं,
देखिए सबसे पहली बात यह है कि सरकार के पहले फैसले में और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि उन्होंने एक तो 100% डाइवेस्टमेंट की बात करी है, इसके अलावा प्राइवेट ओनरशिप है उसमें 49% से ज्यादा ओनरशिप इंडियन होगी, वो सारी कंडीशन बरकरार है। और सबसे रिलीफ की बात है कि जो एयर इंडिया के रियल एस्टेट एसेट्स है उनको इससे अलग कर रखा गया है, क्योंकि सब शंका थी कि वो रियल एस्टेट एसेट्स इसके साथ प्राइवेट पार्टी को बेच देंगे तो एक राष्ट्रीय संपदा का नुकसान होगा, तो एक तरह से ऑपरेशनल एयरलाइंस वो बेचना चाहते हैं।
मोदी सरकार का कहना है कि एयर इंडिया को बेचना ही आखिरी रास्ता था और उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। सरोज सिंह, बीबीसी दिल्ली।
और जैसा कि बीते कुछ समय से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि बीबीसी हिंदी का रेडियो प्रसारण 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। बीबीसी हिंदी का ये लगभग 80 साल का ऐतिहासिक सफर हमारे और आपके जुड़ाव की कहानी रहा है। इन दिनों हम अपने कुछ पूर्व प्रसारकों की यादें आपसे साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुनते हैं इंदुशेखर सिन्हा को, जो अब बीबीसी के एशिया प्रशांत क्षेत्र के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं।
इंदुशेखर, बीबीसी लंदन। इस साइन ऑफ को पाने की इच्छा तो पत्रकारिता शुरू करने या उससे भी कहीं पहले से थी, लेकिन सच कहूं तो ये उम्मीद कतई न थी कि पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत करने के कुछ ही वर्षों में ये उम्मीद, ये इच्छा या दिल से कहूं तो ये प्रार्थना इतनी जल्दी स्वीकार हो जाएगी। पहली बार लंदन के स्टूडियो से बीबीसी के लिए आजकल कार्यक्रम में प्रसारण करना मेरे लिए बड़े गर्व और जिम्मेदारी की बात थी। वैसे बीबीसी के माइक्रोफोन पर इससे पहले मैं एक दफा पहले भी आ चुका था। मंडल कमीशन के दौरान मार्क टली साहब की एक रिपोर्ट में मेरा एक वॉक्स पॉप था। वॉक्स पॉप यानी आम लोगों की आवाज। नहीं जानता था कि वो 12 सेकंड मेरे जीवन का रुख बदल देंगे। लिखने पढ़ने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन एक पत्रकार बन लोगों की आवाज बनने की इच्छा और प्रबल हो गई। एक बार फिर बीबीसी रेडियो पर इन्हीं प्रसारणों के जरिए लोगों की आवाज बनने का मौका मिला। अपने करियर में इससे पहले भी लोगों की बात सुनी थी, सही कानों तक पहुंचाई थी, सरकार, प्रशासन और विभागों से तमाम सवाल जवाब किए थे, लेकिन मीलों दूर लंदन से क्या यह सब कुछ उसी रौब के साथ कहा जा सकेगा? लेकिन फिर बीबीसी पर रेडियो प्रसारणों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के बाद ये यकीन हुआ कि निष्पक्ष और स्वतंत्र आवाज में एक अलग सा विश्वास होता है जिसे रोक पाना सरकारों, विभागों और समाज के ठेकेदार बने लोगों के बस की बात नहीं। बीबीसी के यह रेडियो प्रसारण अब बंद हो रहे हैं, लेकिन रेडियो बंद नहीं हो रहा। बस यूं समझिए कि जैसे जैसे आप रेडियो सुनने के तरीके या माध्यम बदल रहे हैं, वैसे वैसे हम भी आप तक पहुंचने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर आपको तमाम जानकारी मिलती रहेगी। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। हाँ, जुड़ने के माध्यम शायद अलग होंगे, कार्यक्रम के स्वरूप अलग होंगे। तमाम बदलावों और सुधारों के बीच उम्मीद यही कि कभी कभी ये कहने का मौका मिलता रहे। इंदु शेखर, बीबीसी लंदन।
तो आपको एक बार फिर याद दिला दें कि हम डिजिटल माध्यमों पर आपके साथ 31 जनवरी से आगे भी यूं ही जुड़े रहेंगे। हाल ही में हरी भरी उम्मीद नामक एक किताब आई है जो 70 के दशक में उत्तराखंड में चले चिपको आंदोलन पर आधारित है। इस किताब को प्रोफेसर शेखर पाठक ने लिखा है, जो कि एक इतिहासकार, एक्टिविस्ट और घुमक्कड़ के तौर पर जाने जाते हैं। उनसे बात की बीबीसी हिंदी रेडियो के एडिटर राजेश जोशी ने।
हरी भरी उम्मीद जो है वो 20वीं शताब्दी में उत्तराखंड में जो जंगलात के आंदोलन हुए और जिनकी पराकाष्ठा 7वें-8वें दशक में चिपको आंदोलन में हुई, उसका एक विस्तृत, जिसको पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ चिपको कह सकते हो, वह एक तरीके से इस किताब में कोशिश की गई है।
सबको ये मालूम है कि जंगल काटने मजदूर आए थे और महिलाओं ने अपने पेड़ों से चिपक करके चिपको आंदोलन की शुरुआत की, उनको ठेकेदार के आदमियों को भगा दिया। क्या ये सही तस्वीर है चिपको की?
दरअसल ये सही तस्वीर ना आ पाने के कारण ही मुझे चिपको पर लिखने की एक तरीके से निर्णय लेना पड़ा। गांव में उस समय महिलाएं और बच्चे थे और 26 मार्च सन 1974 के दिन जब एक लड़की ने देखा कि जो हाथ कंधे में बनकाटे लिए हुए, कुल्हाड़े लिए हुए ये लोग आ जा रहे हैं, वो दौड़ते हुए गांव की जो मुखिया थी महिला मंगल दल की, गौरा देवी के पास आए।
क्या वो पेड़ों से चिपकी?
नहीं, चिपको में चिपको की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि चिपको में कभी भी चिपकने का मौका नहीं मिला। चिपकने की नौबत आ गई तो वो आपके पराजय की शुरुआत है। आप चिपकने को इस तरीके से दार्शनिक रूप से और एक्टिविज्म के रूप में इस तरीके से रखते थे कि किसी को हिमाकत नहीं होती थी कि वो पेड़ को काटने के लिए आए, क्योंकि वो फिलोसॉफी अपने आप में यूनिक थी कि किसी पेड़ को काटने से पहले वहाँ का समाज, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के युवा, वहाँ के कार्यकर्ता अपने को काटने के लिए प्रस्तुत करते थे, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई। चिपको आंदोलन की जो एक बुनियादी मांग थी कि जंगलों पर निर्भर आर्थिकी, छोटा कुटीर उद्योग और जंगलों का जो अंतर संबंध हमारे खेती से है, हमारे पानी से है, हमारी पूरे संस्कृति और इकोतंत्र से है, उसको बनाए रखने के साथ साथ जो ये कहा था कि जंगल पर वनवासियों का अधिकार, वो अधिकार अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि चिपको ने फॉरेस्ट का जो बुनियादी इश्यू है वो इतने बड़े आंदोलन के बाद भी अभी भी हल नहीं हो पाया है। तो कोई भी समाज अगर सो जाएगा तो उसके हक ले लिए जाएंगे, जैसे अभी कोशिश की जा रही है।
एक इतिहासकार के तौर पे आप इन तथ्यों का कैसे विश्लेषण करेंगे कि ऐसा समाज जो अपने जंगलों को बचाने के लिए सड़कों पे उतर जाए और आंदोलन करे, पूरा चिपको आंदोलन खड़ा करे, वही समाज 90 के दशक में जाति आधारित आंदोलन करता है जब रिजर्वेशन लागू होता है और नारा लगता है कि हमें हमारा उत्तराखंड दो, हम अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी खुद लागू करेंगे, वो निहायत ही दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी आंदोलन अपने एसेंस में था।
जो हमारा पूरा का पूरा समाज था उसमें ओबीसी का प्रतिशत जबरदस्त तरीके से बहुत कम था, तो जब 27% ओबीसी आया तो स्वाभाविक था कि उसने हमारे समाज को उद्वेलित किया। लेकिन इस उद्वेलन के पीछे उतना बड़ा कुतर्क नहीं हो सकता था। कुतर्क वहां से आया जब उन्होंने एंटी दलित और एंटी शेड्यूल टाइप, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो एक मनुष्य के रूप में हमारी कमजोरियां इवन आंदोलनकारी के रूप में भी बनी रहती हैं, ये वाला पक्ष भी उसमें लेने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं ये प्रबुद्ध पाठकों पर, अध्येताओं पर छोड़ता हूँ कि वो इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और राय देंगे, और कहीं पर अगर इस तरीके की त्रुटियां होंगी स्वाभाविक है कि वो उसमें सुधार आएगा, उसको अगले एडिशन में जोड़ दिया जाए।
प्रोफेसर शेखर पाठक से बात कर रहे थे राजेश जोशी, और अब राजेश जी से ही सुनते हैं आपकी चिट्ठियां भी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज भी मेरे साथ कोई नहीं है। चिट्ठियां हैं आपकी, आपके बहुत सारे ईमेल्स हैं, कम से कम 40 या 45 ईमेल तक तो मैंने गिने थे, उसके बाद में गिनती करना भूल गया। कई चिट्ठियां हैं जो डाक से आपने हमें भेजी होंगी, कुछ उनमें से आ गई हैं, कुछ अभी भी रास्ते में होंगी, हम तक पहुंचेंगी। आज भी पिछले हफ्तों की तरह मैं सिर्फ आपकी चिट्ठियां पढ़ूंगा, जवाब देने की दरकार नहीं है क्योंकि जवाब मिल चुका है। जिन श्रोताओं की चिट्ठियां मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाऊंगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम उनका नाम प्रसारित किया जाए। ये पहला ईमेल है चंद्रशेखर गोस्वामी का, कहां से लिखा है इन्होंने ये नहीं बताया है। लिखते हैं, मैंने कल ही आपको चिट्ठी भेजी थी लेकिन मन नहीं भर रहा है क्योंकि अभी मुझे बीबीसी के साथ बहुत सारे सवाल जवाब और बातें करनी थी लेकिन शायद अब वो मौका नहीं मिलेगा। दूसरी ये ईमेल है बलिया दया छापरा से ओंकारनाथ यादव की। लिखते हैं कि मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि 31 जनवरी को आपके कार्यक्रम समाप्त हो रहे हैं। इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में मैं कोई बहुत अहम चीज़ को खोने जा रहा हूं। ये हैं शिवानंद यादव, शोध छात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। इन्होंने खुमार बाराबंकवी की पंक्तियां लिखी हैं। सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में हमको जमाने लगे हैं। यदि आप मेरा पत्र शामिल करेंगे तो मुझे अपार खुशी होगी। कृपया मेरे पत्र को ज़रूर शामिल कीजिए। बीबीसी रेडियो की पूरी टीम के प्रति स्नेह और प्यार। अगला ईमेल है पंकज त्रिपाठी का, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर से ये इन्होंने पत्र लिखा है। लिखते हैं कि अब किसके लिए सुबह जल्दी उठाया जाए। रेडियो पर लाइव प्रसारण का मजा ही कुछ और था, वरना यूट्यूब और डिजिटल फॉर्मेट पर तो अनंत सामग्री बिखरी पड़ी है। रेडियो प्रसारण के बिना बीबीसी बिना इंटरनेट वाला स्मार्टफोन बनकर रह जाएगा। जौनपुर से कामरान अहमद हैं, वो लिखते हैं मैं ये जानने में इच्छुक हूँ कि ये प्रसारण क्यों बंद किया गया और अब बीबीसी हिंदी का नमस्कार भारत और रेडियो दिनभर का प्रसारण हमें कहाँ मिलेगा। तो कामरान भाई, ये प्रसारण तो बंद हो चुके हैं, जिस सूरत में आप इन कार्यक्रमों को सुना करते थे वो अब नहीं होंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ आवाज़ से जुड़ी हुई चीज़ें आपको bbchindi.com पर मिलेंगी। अगली चिट्ठी है राकेश कुमार राम पलामू झारखंड से, वो भी लिखते हैं मैं शॉर्ट वेव पर फ्रीक्वेंसी बदल रहा था बहुत साल पहले कि मुझे बीबीसी हिंदी न्यूज़ सुनाई पड़ी। उस वक्त ऐश्वर्या राय का इंटरव्यू चल रहा था, तब से मैं बीबीसी रेडियो का फ़ैन हो गया। धन्यवाद आपका। कर्नल पी एस रंधावा लिखते हैं, आज ये सुन के अच्छा लगा कि डिजिटल माध्यम से प्रसारण चलता रहेगा, लेकिन पहले आपने ऐसा नहीं कहा था, कृपया इसे स्पष्ट करें। तो कर्नल रंधावा, बात दरअसल ये है कि डिजिटल माध्यम से भी नमस्कार भारत और दिनभर का प्रसारण नहीं चलेगा, दो कार्यक्रम विवेचना और दुनिया जहान ये जारी रहेंगे। अगली ईमेल भेजी है सूरज भान उर्फ एस बी आज़ाद ने, ग्राम खैरटिया जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश से, और वो लिखते हैं ये मेरा पहला और शायद आखिरी खत है। लिखते हैं उल्टी गिनती निराश किए जा रही है, बीबीसी रेडियो के बंद होने से मैं कतई सहमत नहीं हूं, पर किया क्या जा सकता है जब आपने फैसला कर ही लिया है। अगला ईमेल है संजय कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री लखन देव सिंह भुरकुंडा बंगला कुआं रामगढ़ झारखंड से, इनका भी सवाल यही है कि बीबीसी क्यों बंद किया जा रहा है। ओम प्रकाश लिखते हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, जब मैं कक्षा 2 में पढ़ता था मेरे पिताजी बीबीसी सुनते थे, उन्हीं के साथ सुनते सुनते मैं भी बीबीसी सुनने का आदी हो गया, लगता है कि अब मेरा कुछ खोने जा रहा है। अभी बहुत सारी चिट्ठियां बाकी हैं, मेरा यकीन कीजिए कम से कम आधी चिट्ठियां भी मैं नहीं पढ़ पाया हूं। जिन श्रोताओं की चिट्ठियां इसमें शामिल नहीं की गईं या नाम शामिल नहीं हो पाए उनसे मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। आप लिखिएगा ज़रूर, अपनी राय ज़रूर जाहिर कीजिएगा, अपनी भावनाएं हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। पता नोट कर लीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003 और ईमेल है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
ये थे राजेश जोशी और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले प्रमुख विश्व समाचारों के साथ सिंधु वासिनी।
बीबीसी समाचार। चीन में कोरोना वायरस की चपेट में आए अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस से संक्रमित लगभग 3000 लोगों के बीमार होने की भी पुष्टि हुई है। भारत सरकार ने असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी NDFB के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। असम के मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि यह राज्य की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस समझौते के तहत NDFB के 1550 कैडर हथियार और हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करेंगे। तालिबान के दबदबे वाले दक्षिणी पश्चिम अफगानिस्तान में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन इस बारे में मृतकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही दिन भर के इस अंक का समय अब समाप्त हुआ। इसका संपादन किया मोहम्मद शाहिद ने और तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। आपसे अब अगली मुलाकात कल शाम 7:30 बजे, मगर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं अपनी वेबसाइट bbchindi.com के जरिए। फिलहाल मुकेश शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।